Good evening and welcome to the Tuesday edition of Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic, business and stock market news of the day. My name is Rajesh Lake and with me is my co-anchor in Hindi, Manoj Pathak.
Namaskar, Market Mantra ki tazank mein aapka swagat hai. Aadhe ghante ke is karyakram mein hamesha ki tarah hum desh aur duniya ki chuni hui karobari, aarthik aur share bazaar se sambandhit taza khabron ko lekar hazir hain. हमारे साथ खबरों पर स्टूडियो में चर्चा के लिए आमंत्रित हैं आर्थिक मामलों के जाने माने वरिष्ठ विश्लेषक चंद्रशेखर. शेखर जी नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत है.
वार्म वेलकम शेखर.
आइए शुरुआत करते हैं अंग्रेजी में हेडलाइन से जिसे लेकर मौजूद हैं राजेश लीक.
इंडियन बेंचमार्क इंडिसेस एंड इन द ग्रीन आफ्टर हिटिंग रिकॉर्ड हाइज. सेंसेक्स क्लोजेस एट 78,054. निफ्टी सेटल्स at 23,721. Four out of five major Asian indices ended positive today. Major European indices are negative in trading session. And Brent crude fell on Tuesday while investors awaited US inflation data later this week. Both Brent crude and WTI crude fell more than 0.6%.
घरेलू शेयर बाजार में रिकॉर्ड ऊंचाई तक पहुंचने के बाद आखिरकार बढ़त के साथ बंद हुए प्रमुख सूचकांक. सेंसेक्स 78,054 पर हुआ बंद, निफ्टी 23,721 दर्ज हुआ. एशिया के प्रमुख पांच में से चार शेयर बाजारों में लाभ दिखा और उधर अंतर्दिवसीय कारोबार में यूरोपीय बाजारों में देखी जा रही है नरमी. और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में कच्चे तेल के मूल्यों में हुई गिरावट, ब्रेंट और WTI दोनों 0.6% से अधिक फिसले. घरेलू शेयर बाजार में आज लिवाली तेज रही. प्रमुख सूचकांक आज भी रिकॉर्ड ऊंचाई तक पहुंचे लेकिन यह ऊंचाई यह शिखर तक पहुंचना अंत तक बरकरार नहीं रहा और आखिर में लाभ के साथ बंद हुए प्रमुख सूचकांक. अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से मिले सकारात्मक संकेतों पर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स कारोबार के अंत में 712 अंक यानी 0.92% का उछाल लेकर 78,054 पर बंद हुआ. उधर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 183 अंक यानी 0.78% बढ़त के साथ 23,721 दर्ज हुआ. हालांकि विस्तारित बाजार की ओर चलें तो यहां पर बिकवाली अधिक दिखी है सेंसेक्स और निफ्टी पैक की तुलना में. बीएसई मिड कैप इंडेक्स कारोबार के अंत में 0.26% घाटे के साथ बंद हुआ. स्मॉल कैप इंडेक्स में अपेक्षाकृत कम गिरावट हुई, ये 0.03% घाटे में रहा.
India's equity benchmark indices, Sensex and Nifty, ended in the positive territory today after a firm trading session. The Sensex rose 712 points, or 0.92%, to close at 78,054. Nifty gained 183 points, or 0.78%, to settle at 23,721. In the broader market of the BSE, the mid-cap index was down by 0.26% and the small-cap index was marginally down by 0.03%. 15 companies out of 30 registered gains in the Sensex index. The top three gainers today were Axis Bank 3.4%, ICICI Bank 2.48% and HDFC Bank 2.32%. Conversely, the three major laggards were Power Grid 1.64%, Tata Steel 1.24% and Asian Paints 1.16%. In sectoral indices at the BSE, 13 out of 20 sectors were negative. The top three gainers were BankEx sector 1.87%, financial services 1.45% and information technology sector 0.53%. Whereas realty sector 1.82%, power sector 1.09%, 0.05% and utilities sector 0.95% were the three major laggards. The overall market breadth was negative. Out of the 4,000 companies, the share of 1,808 companies advanced, 2,075 declined and 117 remained unchanged.
नजर डालते हैं रुपए की स्थिति पर. अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में एक डॉलर की तुलना में रुपया आज 3 पैसे मजबूत होकर 83.43 रूपये के स्तर पर बंद हुआ. उधर दुनिया की 6 अन्य मुद्राओं की तुलना में डॉलर की स्थिति दर्शाने वाला सूचकांक अंतर दिवसीय कारोबार में 0.15% की बढ़त लेकर 105.62 के स्तर पर कारोबार कर रहा था. सबसे पहले तो हम बाजार में आज की गतिविधि पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहेंगे और समझना चाहेंगे कि कुल मिलाकर किन अर्थों में ले रहे इस तेजी को. विस्तारित बाजार में हालांकि थोड़ी सी नरमी दिखी है लेकिन सेंसेक्स और निफ्टी पैक बढ़त के साथ बंद हुए हैं.
बेसिकली जो बढ़त देखी गई है वो बैंकिंग स्टॉक्स में देखी गई है. जैसा कि बताया गया कि जो मेजर जो सूचकांक के जो मेजर स्टॉक्स हैं जैसे ICICI बैंक, एक्सिस बैंक, HDFC बैंक, इन्होंने इनमें बहुत ज्यादा खरीदारी देखी गई है. तो इस वजह से आज हमारा जो है वो स्टॉक मार्केट जो है वो एक रिकॉर्ड हाई लेवल पे पहुंचा है. बाकी और स्टॉक्स में भी लोगों ने अच्छा इंटरेस्ट दिखाया है बट बेसिकली द चार्ज वॉज लेड बाई बैंकिंग स्टॉक्स टूडे.
So there has been, as you mentioned, the stock market soared to unprecedented heights today, primarily on the back of the banking sector. In fact, they gained quite a bit. Axis 3.4, ICICI Bank 2.48 and HDFC 2.32. So going forward, what would your suggestion be to the investors? Should they now look at the banking stocks more actively?
Yeah, they can always look for the banking stock, but they have to wait for the dips. You know, there's no point in buying a stock which is very high, so they should wait for the stock to settle down, dip a little bit, wait for the opportunity and then enter the market. Because the levels are pretty high at the moment.
Okay.
So it would be better if they hold on with their funds and wait for the right opportunity.
The dips is what they
yeah.
should look for. Okay, also the rupee appreciated quite a bit today. In fact, after 10 quarters, the current account is in the surplus. You gave us the figure of 5.7 billion, which is the 6% of the GDP in Q4.
0.6%
of the GDP. So, what are the factors behind it? What are the reasons why the current account deficit is surplus? If you could tell our listeners about it.
Yeah, if you look at the current account deficit, you know, it has turned into a surplus after a gap of around 10 quarters, which means that around 2.5 years, after 2.5 years, the current account, we are having a current account surplus. What it means is that our external sector is doing well. And, you know, if you look at the reasons for the this surplus, I mean, we have a trade deficit. There's no doubt about it. We'll continue to have trade deficit because we depend upon imports of crude oil and gold and some other raw material. But the main reason for the surplus is that we have a good FII investment, we have a good NRI deposits, we have good services exports. So all these factors, you know, they resulted in the current account surplus. And the current account surplus is one trigger, I think, because the news came not quite late, but maybe after the close of the markets yesterday. So it might have some link to the trigger which we have seen today in the stock markets and also in the strengthening of the rupee.
Yeah.
शेखर जी, यहां पर आम श्रोताओं के नजरिए से हम समझना चाहेंगे कि चालू खाते का घाटा यानी करंट अकाउंट डेफिसिट या चालू खाते का बढ़ना क्या दर्शाता है, यानी आम श्रोता की समझ सकें इस तथ्य को कि यह क्या दर्शा रहा.
ये बेसिकली ये दर्शाता है कि हमारा जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, मतलब हमारी जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व की पोजीशन है या हमारा जो ट्रेड होता है, जो जैसे कि हमारा लेन देन का व्यापार होता है, उसमें जो है हमें इस समय जो है एक होता है मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स या इम्पोर्ट जो होता है जो गुड्स के लिए होता है, एक होता है सर्विसेज का, दूसरा हमारा इन्विजिबल्स होते हैं जो फॉरेन टूरिस्ट वगैरह आते हैं जिसको सर्विसेज एक्सपोर्ट में काउंट किया जाता है, और हमारा होता है जो NRI डिपॉजिट जो बाहर से यहां पे आता है पैसा. तो ये चीज दिखाता है कि जो सरप्लस हुआ है इस बार, मतलब डेफिसिट होता है हमारा यूजुअली, बट इस क्वार्टर नहीं, मतलब ये जनवरी मार्च क्वार्टर में जो फोर्थ क्वार्टर था लास्ट फाइनेंशियल ईयर का, उसमें हमने सरप्लस पोजीशन देखी है। ये एक अच्छा साइन होता है, और चूंकि ये सरप्लस हमने पहले जो है ढाई साल पहले सरप्लस की पोजीशन थी, अब ये 10 क्वार्टर्स के बाद हमने फिर से ये सरप्लस देखा है। इसका मतलब कि जो है जो हमारा फॉरेन एक्सचेंज जो है वो ज्यादा आ रही है और बाहर कम जा रही है, मोटा मोटा इसका ये इस तरीके से समझिए। तो उससे ये होता है कि जैसे ज्यादा बाहर से लेट से कि डॉलर ज्यादा आ रहे हैं तो वो हमारा रूपी को स्ट्रेंथन करता है, तो ये इम्पैक्ट होता है। और चूंकि ये एक रिफ्लेक्शन भी होता है कि हमारा जो एक्सटर्नल मैनेजमेंट है, जो हमारा बेसिकली जो बाहर के देशों के साथ जो हमारा व्यापार है या जो हमारा लेन देन है उसका मैनेजमेंट है वो अच्छा चल रहा है, ये दर्शाता है। और ये एक इकोनॉमिक पैरामीटर भी है कि जो हम कहते हैं हमारे फंडामेंटल्स स्ट्रांग है, तो ये एक फंडामेंटल है जो कि हमारा स्ट्रांग है।
ओके शेखर, द पॉजिटिव आउटलुक ऑफ द मार्केट एज यू वेरी राइटली सेड कुड एलिविएट द प्रेशर ऑन द रूपी, and also will it facilitate the FII's inflows once they get clarity over the Federal Reserve's rate cut?
Yeah, this US Fed is going to have its meeting, I think, on 30th July or 31st July, later next month. So much will depend upon what decision the US Fed takes. Currently, there are mixed signals that they may go for the rate cut, they may hold on to the rate, or they may even increase the rate. So, nothing is clear at the moment. But if we take a cue from the banks in the European market, European countries like, say, Swiss National Bank or Bank of Canada, they have started cutting their benchmark rates. So, we can have some positive signal from the Europe. And but still, you know, U.S. is important. U.S. is the mother of all markets, and U.S. dictates to the world.
Correct.
So much will depend upon what U.S. Fed does in July.
So, Shekhar, the market is going to take cues from the global macros, as you very rightly mentioned, and the progress of the monsoon going forward. Do you think Nifty will consolidate at the current juncture? And with a dash of volatility amid the monthly derivatives expiry, which we were talking about a while back.
Yeah, monthly derivatives are expiring. You know, I think the bank Nifty will expire tomorrow. The derivatives of the monthly derivatives will expire. And likewise, you know, Nifty and Sensex, they all have their expiry in the coming days, I mean, within this week. So, you know, around the monthly expiry, we do witness a lot of volatility because large traders, they have taken their positions and they book profits or they play a lot in the market. So, we see a lot of volatility.
We need to brace ourselves for the volatility in the market. Okay, what about the valuations? In your opinion, are they high at the moment? Will the high valuation prompt the FIIs to sell and profit book?
FIIs have been, if we see, there's no fixed pattern, but FIIs, someday, you know, they are net sellers, the other day they are net buyers. So FIIs are already, you know, they are in the game of booking profits and they look for the opportunity whenever they feel that the valuations are a bit low, they enter the market and they push the market. But FIIs do play a low role, but now I think domestic institutions are bigger players, and retail investors, you know, there are a lot of retail investors who just invest and, you know, they don't sell and purchase, you know, like FIIs.
But the strategy of buying in dips is really working.
Yeah, buying index, you buy index, but actually you wait for the opportunity, because you don't buy when it's too, when the markets are very high. Although it is said, you know, there's a difference between the local market, Kirana market, and stock market. You know, if something is cheap in a stock market, it doesn't mean that it's a value buying. So one should look for blue chip companies and those who are doing well. And it's very difficult to say what is the level one should look for, but one should wait for some easing of the market to एंटर इट।
शेखर जी, यदि हम एफआईआई के निवेश और बिकवाली को देखें, यानी पूंजी निकालने को देखें, तो हमने कई अवसरों पर देखा है कि लगातार कई महीनों तक एफआईआई ने निकासी की है कुल मिलाकर, उसके बाद भी हमारा बाजार मजबूत बना रहा। इस मजबूती के पीछे घरेलू कारक महत्वपूर्ण रहे या जो नए निवेशक जो स्मार्ट निवेशक माने जाते हैं वो रहे या डीआईआई रहे उनका निवेश रहा, भारतीय बाजार को जो पूंजी बाजार को जो मजबूती दे रहा है एक रेजिलियंस दे रहा है वो कौन से फैक्टर्स हैं?
देखिए, सबसे बड़ा फैक्टर तो है रिटेल इन्वेस्टर्स, बहुत ज्यादा क्वांटिटी बहुत ज्यादा मात्रा में रिटेल इन्वेस्टर्स आ गए हैं, म्यूचुअल फंड्स आ गए हैं, जो कि म्यूचुअल फंड्स जो डेली एफआईआईएस की तरह सेल परचेज नहीं करते हैं, वो एक स्ट्रेटजी के तहत जो है मार्केट में एंटर करते हैं और लंबे समय तक मार्केट में रहते हैं, क्योंकि उन्हें जो अपने इन्वेस्टर्स हैं उनको रिटर्न देना होता है। तो म्यूचुअल फंड्स एक बहुत बड़ा इन्वेस्टर है। दूसरा जो हमारे डोमेस्टिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, जिस तरीके से जैसे एलआईसी हो गया या कुछ बैंक्स भी हैं जो एक पोर्शन जिनको परमिटेड है मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए, वो एफआईआईएस की तरह से नहीं बिहेव करते हैं। दूसरे एफआईआईएस अगर सेल करते हैं बाय करते हैं तो उसका फैक्टर डोमेस्टिक भी हो सकता है इंटरनेशनल भी हो सकता है, क्योंकि उनको अपनी कैसे फंड की रिक्वायरमेंट है अपने जहां से वो ऑपरेट कर रहे हैं तो, या वहां पे क्या इंटरेस्ट रेट चल रहा है या उनको रिटर्न्स कहां से अच्छे मिल रहे हैं, तो ये सारे फैक्टर्स एफआईआई के लिए मैटर करते हैं, जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर है उसके लिए ये सारे फैक्टर्स नहीं मैटर करते हैं। वो तो एक जैसे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं या म्यूचुअल फंड्स हैं तो इनके लिए ये फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ये इन्वेस्टेड रहते हैं, वंस दे बाय स्टॉक दे स्टिक विद द स्टॉक फॉर रीजनेबल टाइम।
सो शेखर, यू मेंशनड म्यूचुअल फंड्स एंड देयर इज वन फंड व्हिच इज इन द आई ऑफ द स्टॉर्म एंड अंडर सेबीज स्क्रूटनी, सो व्हाट इज द फ्रंट रनिंग एंड what responsibilities do financial institutions have in preventing front running within their operations?
It is for the job of the SEBI to see that nothing goes wrong in the stock market, because stock market is a very sensitive place, and if something bad happens, it can impact the markets, it can erode the wealth of investors, and it can have very severe consequences for the economy. So it is for the SEBI to look at the market and find out if there's something wrong or happening and take preemptive actions.
यहाँ पर आपने एक बड़ा अच्छा यानी कहने के शब्द का प्रयोग किया है जो हम आम अपने जो श्रोता है उनके नजरिए से समझना चाहेंगे। दो चार दिनों के अंतर में ही सेंसेक्स और निफ्टी दोनों लंबी छलांग लगाते हैं या नीचे आ जाते हैं, तो उस समय जो इरोड हुआ यानी पूंजी का नुकसान हुआ या उस समय एक ही दो दिन में जो बढ़त हो गई, वह वास्तविक होती है या सिर्फ आभासी होती है?
रिटेल इन्वेस्टर के लिए तो आभासी है, क्योंकि भाई जैसे आपका शेयर, आपने जो भी शेयर लिया है एक्स वाई जेड, अगर वो से 100 में लिया है वो 110 हो जाता है और आप सेल नहीं करते हैं तो वो आपके लिए प्रॉफिट भी नोशनल होता है, और अगर मान लीजिए वो 100 से नीचे घट जाता है 95 हो जाता है तो लॉस भी नोशनल होता है। तो ये उस पर डिपेंड करता है कि आप किस समय जो है अपना जो आपने स्टॉक खरीदा है आप किस समय उसको ऑफलोड करते हैं और आपकी परचेस प्राइस क्या है और आपकी ऑफलोडिंग प्राइस है, तो वो तो रियल होता है, लेकिन बाकी तो नोशनल होता है कि आभासी होता है।
यानी श्रोताओं, यहां पर ये ध्यान रखने वाली बात है कि बाजार में यदि आप देखें कि एक ही दिन में लाखों करोड़ स्वाहा और एक ही दिन में देखें कि फिर इतने करोड़ का मुनाफा, तो उससे ना बहुत
आपके कान खड़े हो,
हाँ, यानी आपके कान खड़े जरूर हो जाए लेकिन ना तो दुख मनाना चाहिए ना तो बहुत खुश होना चाहिए, क्योंकि आज यदि लंबे समय में जो निवेश आपका है वही लाभदायी साबित होगा।
एक लास्ट वन लास्ट क्वेश्चन रिलेटेड टू द मार्केट दैट वी हैव सीन द शार्प बाउंस बैक इन निफ्टी बाय 7.5% फ्रॉम द लोज ऑफ जून 4, राइट? So this indicates that the undercurrents are bullish. If that is so, then what is your expectation from the market in the coming days?
Yeah, if you look at
that, you didn't mention volatility. I know.
Market. Market. They don't move in one direction. They move in cycles. So they'll be up, they'll be down. But if you look at the trend is up. And for the next next month or so, if we see, the major things are happening. We are going to have a budget. sometime in July. That is one major event. And finance minister has already started holding pre-budget meetings with different stakeholders. She has met industry leaders, she has met economists, she has met trade unions, she has met representatives from the services sector. So she is looking into all the suggestions what are being made. And she'll have to make her mind before presenting the budget for the...
Taking care of common man's biggest question, will she give us major relief?
Yeah, I mean, people are expecting, but, you know, they have their own compulsions. People are expecting, and even the industry chambers and trade unions and other economists are saying, you know, that that the minister must do something for the common man, because it is necessary to push demand, and that's how you push the economy.
Yes.
शेखर जी यहां पर यानी कह लें कि जो बाकी पक्ष हैं वो उनका अपना पक्ष हो कि वो क्या अपेक्षा रखते हैं एक वरिष्ठ विश्लेषक के रूप में वरिष्ठ पत्रकार के रूप में हमारे शेखर जी इस बजट से क्या अपेक्षा रख रहे हैं जो सुधार की प्रक्रिया हमने बीते सरकार में देखी यह पहला ही बजट होने जा रहा है किस प्रकार की अपेक्षा आप इस बजट से रख रहे हैं विकास के चक्के को तेज गति से आगे बढ़ाने के लिए
How do we increase consumption if we don't give the common man money in his hand?
Yeah, if you look at the consumption, you know, there has been a demand by the industry, and rightfully so, that the minister must give something for the salaried class. They are the biggest. ये जो है salaried class जो है ये एक बहुत महत्वपूर्ण क्लास है जो उसके लिए जो अच्छा इसमें क्या सुविधाएं दी जा सकती है तो पहला है कि जो टैक्स रेट है उनको थोड़ा सा कम किया जाए या उस तरह के रिलीफ दिए जाए कि उन पर जो बर्डन है टैक्स का बर्डन है वो कम हो दूसरा है कि एक जो है कि स्टैंडर्ड डिडक्शन जो है उस पर आप उसको इंक्रीज करें जिससे कि उनके हाथ में ज्यादा पैसा है तीसरा है कि आप जैसे इनडायरेक्ट टैक्स तो काफी कुछ जीएसटी में चला गया है लेकिन फिर भी जो कुछ हो सकता है आप उसको इस तरीके से मैनेज करें कि जो बर्डन है कॉमन मैन पे वो कम हो और उसके हाथ में ज्यादा पैसा हो क्योंकि एक्चुअली हमारी जो ये मार्केट इकोनॉमी है इसको कंजम्पशन ड्राइव करता है तो कंजम्पशन एक बहुत बड़ा इंजन है और उसको आपको फ्यूल करने के लिए आपको थोड़ा पैसा जो है कॉमन मैन को देना पड़ेगा और तभी जो है जो जिस तरीके का माहौल बना हुआ है इसको जिस तरीके की जो इसको जो है आगे ले जाने के लिए ये जरूरी है कि थोड़ा सा उनको रिलीफ मिले
यानी आप जिस राहत की बात कर रहे हैं हम उम्मीद करें कि बजट में जो कल्याणकारी योजनाएं रही हैं खासतौर से जो गरीब तबका है उसके लिए वो जारी रहेंगी या विगत में हमने देखा कि कुछ कटौती की गई है जैसे मनरेगा जैसी योजनाओं में कटौती की गई या कई जगहों पर कटौती की गई तो किस तरह का रुझान लग रहा है अनुमान लगा पा रहे हैं आप
नहीं ऐसा तो नहीं लग रहा कि मनरेगा में कटौती होगी क्योंकि जो अभी तक जो एक तरीके से डिमांड उठ रही है कि मनरेगा में जो पैसा मिलता है उसको थोड़ा बढ़ाया जाए क्योंकि वो कई साल हो गए जो फिक्स हुआ है तो उसको थोड़ा बढ़ाया जाए जिससे कि और लोगों को थोड़ा पैसा मिले और जो कल्याणकारी योजनाएं हैं वो तो चलती रहेंगी जैसे कुछ ऐसी भी डिमांड है जो पीएम किसान निधि में जो पैसा दिया जाता है किसानों को उसको भी थोड़ा सा बढ़ाया जाए तो ये सारे तरीके हैं जो कि माइक्रो लेवल पे आपके पास कितना पैसा है और आप क्योंकि इस बार जो है आरबीआई से भी बहुत अच्छा डिविडेंड आया है तो हाँ वो एक प्लस पॉइंट है जो आपके लिए आपको काफी लीवे देता है आपको काफी कुशन देता है जो कल्याणकारी योजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए
सो हाउ कैन वी गो अहेड एंड इंक्रीज द रूरल कंजम्पशन बिकॉज दैट इज एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट
रूरल कंजम्पशन के लिए द मेन थिंग इज दैट दे कैन एलोकेट सम मोर फंड्स फॉर Manrega and you know and the activities you know like construction of rural roads and houses in the rural sector you know they all and the infrastructure development they all create jobs and if the jobs in the rural areas are created it will result in some purchasing power for the people living there so that's how it will add to the demand
आइए अब चलें वैश्विक बाजारों की ओर सबसे पहले एशियाई शेयर बाजार जहां पांच प्रमुख बाजारों में से चार में तेजी बनी रही चीन में बिकवाली का दबाव देखा गया निवेशकों की सक्रिय भागीदारी से जापान का निक्केई 225 सूचकांक 0.94% लाभ में रहा। दक्षिण कोरिया के कोस्पी में 0.35% की वृद्धि हुई। हांगकांग का हैंगसेंग 0.25% और सिंगापुर का स्ट्रीट्स टाइम्स इंडेक्स 0.37% लाभ के साथ बंद हुए। उधर बिकवाले के दबाव में चीन का शंघाई कंपोजिट इंडेक्स 0.44% लुढ़क गया। यूरोपीय बाजार की ओर चलें तो सभी प्रमुख बाजारों में समाचार तैयार किए जाने तक बिकवाली की प्रवृत्ति दिख रही थी। फ्रांस का कैक 40 0.79% घाटे में चल रहा था। जर्मनी के डेक्स में 1.07% की बड़ी गिरावट नजर आ रही थी और लंदन का फुटसी 100 0.17% घाटे में चल रहा था।
In the US markets, 2 out of 3 major indices ended in red on Monday as gains in industrial stocks boosted the Dow Jones Industrial Average, while a retreat in leading tech names weighed on the Nasdaq Composite Index. The Dow Jones Industrial Average gained 0.67%, while the Nasdaq Composite tumbled over 1% and the S&P 500 fell 0.31%. Shekhar, European stocks have been in the red. US is in the red. What is all this indicative of?
Well, we are seeing some global developments, you know, which are not very stock market friendly. You know, like what is happening in the Ukraine and
the geopolitical
situation, and maybe that may be impacting the markets in Europe. And partly also U.S. markets also, they are being impacted by the geopolitical developments, especially in Israel-Hamas war and developments in Ukraine. And these are like saber-rattling by some countries. So these are the things which are impacting there.
यहाँ पर हम आपका ध्यान यूरोप की ओर ले चलना चाहेंगे और यूरोप में जो कह लें हाल में यूरोजोन का चुनाव हुआ था उसमें दक्षिणपंथी पार्टियों का उदय या कह लें प्रभुत्व दिखता नजर आ रहा है। फ्रांस में नए चुनाव की तैयारियां यानी कवायद शुरू हो गई है, तो क्या लग रहा है कि ये जो रेडिकल पार्टीज हैं उनके आने से भी बाजार प्रभावित होता नजर आ रहा?
हाँ, ये लेफ्ट ओरिएंटेड पार्टीज जो हैं बाजार, तो ये बाजार इनको नहीं मतलब वेलकम करता है। लाइक चुनाव तो यूके में भी होने वाले हैं और तो ये एक इशू है मार्केट के लिए, बट ये टेम्परेरी होता है बिकॉज मार्केट हैज लिव्ड विद ऑल काइंड्स ऑफ गवर्नमेंट, लेफ्टिस्ट गवर्नमेंट, राइट विंग गवर्नमेंट, सो
ये बहुत अधिक अनकर्णी
है। टेम्परेरी तो फर्क पड़ता ही है क्योंकि वो पॉलिसीज हैं।
क्विक टेक ऑन द चाइना मार्केट, दे लॉस्ट 0.44% टुडे। हाउ डू यू सी इट मूविंग फ्रॉम देयर एंड व्हाट रेपरकशंस विल चाइनाज मार्केट और द वे द चाइनीज इंडस्ट्रीज आर गोइंग विल हैव ऑन द इंडस्ट्री ब्रीफली?
Yeah, because you know China will, because China is a major economy and whatever happens in China does impact the markets elsewhere, but to an extent only. But to say that they will influence the global market in some substantive way is not true, but they will have some impact on them.
Okay. Brent crude oil fell on Tuesday while investors awaited U.S. inflation data later this week, but prices held above the $85 level after the previous session's gain on escalating geopolitical tensions and hopes of improved demand this summer. Brent crude was down by 0.63% to $85.47 per barrel. The U.S. West Texas Intermediate crude was lower 0.65% to $81.10 per barrel when reports last came in.
आइए अंत में चलें सर्राफा बाजार। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में आज समाचार तैयार किए जाने तक सोने और चांदी की चमक फीकी दिख रही थी। अगस्त में आपूर्ति किए जाने वाले सोने का मूल्य 0.12% घटकर 71,708 रूपये प्रति 10 ग्राम पर चल रहा था। वहीं जुलाई में आपूर्ति वाली चांदी 0.12% घाटे के साथ 88,815 रूपये प्रति किलो पर थी। अंतर्राष्ट्रीय बाजार की ओर चलें तो कॉमेक्स में सोने का मूल्य 0.07% कम होकर $2,342.70 पर था।
Thank you, Shekhar, for being with us and answering all our queries related to the market. Thank you.
Thank you.
And the headlines before we close. Indian benchmark indices ended in the green after hitting record highs. Sensex closed at 78,054, Nifty settled at 23,721. Four out of five major Asian indices ended positive today, and Brent crude fell on Tuesday while investors awaited U.S. inflation data later this week. That's all we have in this edition of Market Mantra. Until tomorrow, goodbye. Market Mantra.